ओम शांति।
आप सबका खिला हुआ चेहरा ही बता रहा है कि भाई साहब ने सबकी आत्मा को कितना चार्ज, रिफ्रेश और एक्टिव कर दिया है। तो भाई साहब को थैंक्स देने की बारी आती तो कैसे देंगे थैंक्स? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम सभी तहे दिल से भाई साहब का थैंक्स करते हैं। साथ में हमारे बीच में आदरणीय कृति दीदी जी आ रहे जो कि आप सबकी बच्ची का बहुत ही सुंदर ढंग से संचालन कर रहे। तो दीदी जी के परिचय में कहना चाहेंगे, आदरणीय दीदी जी 1973 में ज्ञान में आए और 1980 में ज्ञान में समर्पित रूप से यज्ञ में सेवा दे रहे हैं। साथ में ही आप यूथ विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर है और अहमदाबाद सैटेलाइट सेवा केंद्र का बहुत ही सुचारू रूप से संचालन कर रहे। देश विदेश सभी जगह आप अपनी सेवाओं से अन्य आत्माओं को बहुत ही आनंद प्रदान कर रहे। साथ में दीदी जी निर्मा यूनिवर्सिटी में लगभग 10 वर्ष आपने विजिटिंग फैकल्टी के रूप में बहुत ही सेवाएं दे करके अन्य आत्माओं को भी बाबा के ज्ञान के साथ जोड़ा है। तो दीदी जी का आज का विषय है मायाजीत, विकर्माजीत और कर्मातीत। इस विषय पर दीदी जी हम सबके बीच में प्रकाश डालेंगे। थैंक यू।
हम सबको प्राण प्यारे बाप दादा ने हमारी अंतिम स्थिति का जो लक्ष्य दिया है वो लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति, संपन्न स्थिति या संपूर्ण स्थिति। इस संपन्न या संपूर्ण स्थिति के लिए हमें दो स्टेप्स, दो सीढ़ी पहले चढ़नी होगी। पहला कदम है मायाजीत स्थिति। हम सभी हमारे ज्ञान के जीवन के बचपन में चले जाएं। जब नया नया हमें ज्ञान मिलता है, सुनते सुनते कईयों का अनुभव होगा बड़ी खुशी मिली, हम बहुत समय से ढूंढ रहे थे, भगवान का परिचय मिल गया, हमें परमात्मा ज्ञान मिल गया। ये पहली अनुभूति ज्ञान में आते ही निश्चय बैठते ही हम करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही हम वो निश्चय के फाउंडेशन को थोड़ा मजबूत करते हैं, हमारे सामने कई माया की चैलेंजेस, कई माया की चुनौतियां, कई माया की परीक्षाएं एक के बाद एक आना शुरू होती है। कोई के पास लोक लाज के रूप में आई होगी, अरे ब्रह्मा कुमारी में जाता है, अरे वहां तो ऐसा होता है, लोक लाज के रूप में आता है। कोई के पास ज्ञान में आए, क्लास में आना शुरू हुआ और अचानक से कोई परिस्थिति आ गई और एक ब्रेक पड़ गया। अलग अलग बातें आती हैं, अलग अलग स्वरूप से निश्चय होते ही हम सभी की वैरायटी प्रकार से परीक्षा आना शुरू होता है। कोई इन परीक्षाओं में बड़ा सहज पार हो जाता है, आया और गया। कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो अपने निमित्त बने हुए जो भी भाई बहन हैं, उनकी भी ज्यादा मदद या शक्ति नहीं लेते हैं, उनका निश्चय का बल इतना स्ट्रांग होता है कि शुरू में आने वाली छोटी छोटी मायावी बातों को वो सहज पार कर लेते हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो धारणाओं की कसम कस शुरू होती है, छोड़ने की बातें आती है। कोई ज्ञान में परिवार सहित चलता है तो उनको धारणाओं में कम मेहनत लगी, कोई ने अकेला ज्ञान में चलना शुरू किया तो जब तक सामने वाली व्यक्ति सहयोगी न बन जाए तब तक धारणाओं के बल में, चाहे वो खान पान है, पवित्रता है या कोई भी धारणाएं है, उसमें थोड़ा थोड़ा संघर्ष आना शुरू होता है। तो जब से हम बाबा का बनते हैं तब से माया की बहुत स्पेशल नजर हम पर पड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका ग्राहक अभी ट्रांसफर हो रहा है, कोई नहीं चाहेगा, इसीलिए उस समय माया की कड़े से कड़ी नजर, एक पक्की वो जासूस वाली नजर माया की हम पर रहती है। और उसमें भी अगर कोई कमजोर दरवाजा निकल आता है तो वो हमारा अपना कमजोर दरवाजा ही हमारे लिए माया का बड़े से बड़ा कारण बन जाता है। आती है विभिन्न रूप से। थोड़ा और हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे 2-5 साल हो गए, अब थोड़ा नाम मान शान चांस नहीं मिला, मुझे चांस मिले तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, उसका नाम मान, उसको बुलाया, उसको तो बहन जी हमेशा ओम शांति करती, हमारे पर तो इतनी नजर ही नहीं है किसी की, ये मान शान चांस, ये सब बातों का धीरे धीरे हमारे मन में एक भाव या एक मायावी स्वरूप आना शुरू हो जाता है। इस माया को भी जो पार कर लेता वो आगे बढ़ जाता है। हम लोग देखते हैं सेंटर में, आप लोगों का सबका अनुभव होगा कि नए नए बहुत सारे आते हैं, कोई 1-2 साल टिकते हैं, कोई 5 साल टिकते हैं, बहुत लंबा समय तक ज्ञान में चलने वाले बाबा के कम बच्चे होते हैं, कंपैरेटिवली आना जाना लगा रहता है। आना जाना इसीलिए लगा रहता है क्योंकि जो पहला कदम है माया को परख कर माया पर विजयी होना, इसमें जो थोड़ा कच्चा खा लेते हैं, थोड़ा कम मार्क्स ले लेते हैं, कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि अंत समय नजदीक आता जा रहा है, अंत समय में माया और प्रभावी रूप से अपना काम करती है। जैसे जैसे अंत समय नजदीक आएगा, माया के जाने का समय आएगा, उतना उतना माया अपना गहरे से गहरा प्रभाव छोड़ना शुरू करेगी। अनेक प्रकार की मायावी बातें वो धीरे धीरे आकर्षण के रूप में कहां न कहां हमारी मन बुद्धि को खींच ले जाती है। कोई कही हुई बातें, कोई सुनी सुनाई बातें, कुछ व्यर्थ बातें, ये सब भी धीरे धीरे हमारी माया का स्वरूप बनता है। हम और आगे बढ़ते हैं, माया का और गहरा रूप बनता है, फिर माया हमारे आंतरिक निश्चय को अलग अलग प्रकार से टटोलती है। साकार के समय में बाबा ने कह दिया कि बाबा का मुकरर रथ और मुकरर स्थान एक ही है। पहले साक्षात्कार की धूम मची हुई थी, अब धीरे धीरे यज्ञ में वो पार्ट बाबा ने कायदे से ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, कुछ ऑफिशियल संदेशियों को नियुक्त किया गया है और पार्ट उनके द्वारा ही चले, ये डायरेक्शन मिला है। फिर भी माया अपना रूप रंग दिखाती है, कभी कोई आत्मा की प्रवेशता, कभी कोई की प्रवेशता, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में साकार मुरलियों में बाब ने कहा। कोई कहेगा मेरे में मम्मा आती है, कोई कहेगा कोई आता है। भगवान ने अपना पढ़ाने का कार्य संपन्न किया, ये सोचने वाली बात है। साकार के द्वारा इतने वर्षों तक बाबा ने डायरेक्ट जो भूली हुई नॉलेज की बातें थी वो सुनाई। अव्यक्त मुरलियों को हम देखेंगे तो अव्यक्त मुरलियों में साकार में बाबा ने जो बातें पढ़ाई उसकी गहराई है, डेप्थ है। काफी सारी मुरलियां कोई एक विषय की तह में जाकर के बाबा की चलाई हुई मुरलियां हैं। माना नॉलेज को भी बाबा ने गहराई से अव्यक्त मुरलियों के द्वारा पढ़ाया। हमेशा परीक्षा के पहले कोर्स पूरा हो जाता है, कोर्स पूरा हो जाने के बाद स्कूल कॉलेजेस में बच्चों का जाना भी बंद हो जाता है, वो स्टडी टाइम होता है। ऐसे भगवान को जितना पढ़ाना था, जो पढ़ाना था कायदे से, उसने अपना पढ़ाने का कार्य पूरा किया। हम लोग अभी रोज सुबह शाम साकार अव्यक्त मुरलियां सुनते पढ़ते, पढ़ी हुई नॉलेज या सुनाई हुई नॉलेज का रिवीजन कर रहे हैं। क्यों? अंत समय में आज भी बाबा ने कहा ना, मैं मच्छरों सदृश ले जाऊंगा, माना एक साथ झुंड के झुंड आत्माएं जाएंगी तो मैं और आप यहाँ किस लिए बैठेंगे। जरा सोचो इस बात को कि अगर लाखों आत्माएं एक साथ जाएंगी, जगह खाली हो जाएगी, नई दुनिया की स्थापना का कार्य शुरू हो रहा होगा, मैं और आप यहाँ किस लिए बैठेंगे। क्या हमें नंबर वन आत्मा के साथ जाकर नंबर वन के साथ वापस नहीं आना है, आना है कि नहीं आना है। जो कहते हैं हमको नंबर वन के साथ, माना बाबा के साथ गेट खोलकर घर जाकर वापस बाबा के साथ साथ नई दुनिया में ब्रह्मा बाबा के साथ आना है, वो हाथ उठाओ। देखो सारी सभा में कोई होगा जो हाथ ना उठाए, तो फिर हम यहाँ क्यों बैठेंगे। तो सब जाएंगे, उड़ेंगे हम सब। एक और बात आज बाबा ने कही कि हम बाबा के बच्चे ऐसे उड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल निकला। माना अंतिम स्थिति हमारी ऐसी माया जीत होगी कि माया का कोई भी आकर्षण मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। मेरी बुद्धि, मैं और मेरा बाबा एक बल, एक भरोसे में इतना डूबी हुई है जो बुद्धि और कहीं खींच ही नहीं रही है। जब सामने मैं और मेरा बाबा है तो मुझे बाबा की लिस्ट मिलेगी, पुकार आएगी तो आत्मा सहज उड़ जाएगी, बिना कष्ट के उड़ जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ मेहनत से अपनी अवस्था को माया जीत वाली अवस्था बनाना होगा। कितनी भी मायावी बातें हमारे सामने अब आए, अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है तो टचिंग भी आएगी कि ये माया है और बाबा कहीं से हमको बचा लेगा। और अंत में ये सब होना है, मायावी बातें हमारे सामने आएगी। मैं बाबा की एक अव्यक्त मुरली को पढ़ रही थी जिसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे अंत में झाड़ हिलेगा। अब कोई भी झाड़ जब हिलता है तो क्या होता है, सच्चे प्रतिफल होंगे वो गिर पड़ेंगे। ऐसे जैसे जैसे समय नजदीक आएगा हलचल खूब मचेगी, एक तरफ जय जयकार होगा, भगवान आया है, फरिश्ते कहीं इस दुनिया पर है, अच्छे अच्छे अनुभव लोग करेंगे, कोई आया हमको ईश्वरीय संदेश देकर गया। एक तरफ फरिश्तों के द्वारा ऐसे सुंदर सुंदर अनुभव करेंगे, जय जयकार वाली स्थिति बनेगी, और दूसरी तरफ माया झाड़ भी हिलाएगी, कच्चे पक्के गिरेंगे, और जो सचमुच अंदर से निश्चय बुद्धि होंगे ऐसी आत्माएं टिकेंगी। अब हमें अपने के लिए ये मजबूत करना है कि क्या मुझे अंत समय तक टिके रहकर साथ जाना है, साथ जाना है या बीच से निकलकर चले जाना है, साथ जाना है। चाहे ये तन में है, चाहे तन कभी अभी मानो छूट गया तो बदल भी जाएगा, लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि अंतिम समय में साथ जाना है और साथ आना है। अगर बाराती के रूप में जाना है तब तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज शिव की बारात में कैसे लोग दिखाते हैं, देखा है ना, लूले लंगड़े बेरे काने सब प्रकार के बारात में जाते हैं। तो ऐसे आधी अधूरी स्थिति में बाराती बनकर हमको नहीं जाना है, हमें साथी के साथ साथी के रूप में जाना है।
सतयुग में अब तुम्हें आ
किसी मायाचीत स्थिति के लिए सबसे पहला पुरुषार्थ जो हमारी मुरब्बी दादियों ने किया, साकार मम्मा और बाबा ने प्रैक्टिकल में किया, सबसे पहला पुरुषार्थ है शक्तिशाली अमृतवेला। अमृतवेला हम सब उठते हैं, लेकिन मेरा अमृतवेला शक्तिशाली हो। आजकल तो बहुत सारे साधन टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद की है, उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हमारा अपना ही अलबेलापन कई बार इजी और इजी के साथ साथ केयरलेस अलबेला बना देता है। जितने भी हमारे वरिष्ठ आगे गए हैं, उनके जीवन की ये एक बहुत पावरफुल साधना रही अमृतवेला। हम मम्मा के जीवनी सुनते हैं, मम्मा सुबह 2 बजे उठते थे। साकार बाबा की बात सुनते हैं, साकार बाबा अमृतवेला 2 बजे 2:30 बजे उठते थे। हमें जो समय मिला है, चलो हम 2 बजे सब कार्य कारोबार में है, 2 बजे नहीं उठ सकते हैं, लेकिन जो समय हमें अमृतवेला का मिला है 4 से 4:45, कम से कम उस समय को तो हम अच्छी तरह फ्रेश होकर के बिताएं। इसका बड़े से बड़ा फायदा ये होगा, जिसका अमृतवेला शक्तिशाली होगा उसको राइट टाइम पर जो भी कार्य करना होगा उसकी राइट टचिंग मिलेगी। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हम कर सकते हैं ये टचिंग के द्वारा। कार्य होना होगा, जो कार्य होना होगा, जिस रूप से कार्य करना होगा, उस रूप की एक्यूरेट टचिंग हमारे पास आएगी। मैंने इस बात को खुद पिछले 1 साल में खूब अनुभव किया है, तब मैं इतना कॉन्फिडेंस से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्यूरेट टचिंग मिलेगी। दूसरा, शक्तिशाली योग की अवस्था के कारण अगर कोई उल्टी सुलटी बात सामने आएगी, वो परख भी हमारी एकदम स्पष्ट हो जाएगी, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, और हमारे द्वारा कोई भी अयोग्य कार्य होगा ही नहीं। हमारे बड़ों ने ये प्रयोग किए, जब जब यज्ञ में कोई बड़े विघ्न आए, सुनी होगी ये सब बातें आप लोगों ने भी, जैसे दिल्ली में एक बार मेला लगना था, मेला काफी कुछ तैयार हो गया और गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ कोई गवर्नमेंट के बड़े मेहमान आने वाले हैं और यहाँ पर उनका प्रोग्राम करना होगा, तो आप अपना ग्राउंड आपको चेंज करना पड़ेगा। दादी जी के पास बात आई, दादी जी ने एक ही प्रोग्राम दिया, योग करो। योग के प्रयोग से लेट नाइट, एक बार आशावेन सुना रही थी कि लेट नाइट फोन आया कोई आईएएस ऑफिसर का कि अभी आपको ये मैदान खाली करने की जरूरत नहीं है, हमने गवर्नमेंट वाले प्रोग्राम को दूसरे मैदान में शिफ्ट किया है और ये इतिहास में उस समय पहली बार था। ये है योग का कमाल, ये ही योग के प्रयोग, चाहे स्वप्रति चाहे संगठन में। स्वयं के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा होकर योग करो। अभी अभी सूरज भाई पत्र की बात कर रहे थे, कोई भी चीज को दृढ़ता से अपना लो, 11 दिन 21 दिन 40 दिन योग का प्रयोग करेंगे और करके देखो। अगर निष्ठा पूर्वक सिंसियरली आपने निश्चय किया और वो प्रयोग किया तो कार्य हुआ पड़ा है। मैं अभी अभी का एक प्रयोग सुनाती हूँ। पिछले लगभग 10-11 वर्षों से सेंटर के लिए एक बड़ी जगह ढूंढ रहे थे, खूब जगह देखी, कोई 100 जगह देखी होंगी। एक दिन मेरी सीनियर है चंद्रिका दीदी, बात चल रही थी तो कहा, कृति मुझे आज विचार आता है तुम 40 दिन का अमृत वेला क्लास वालों को कराओ। अब सेंटर में आने के लिए सोसाइटी की परमिशन नहीं इतनी जल्दी जल्दी, तो आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो दूसरे दिन से हमने ऑनलाइन शुरू किया। क्लास वालों को सबको कहा कि ऑनलाइन सभी योग करो अमृत वेला। कायदे से हम लोगों ने, बहनों ने, मेरा अपना लक्ष्य ही रहा और 40 दिन चाहे मैं आबू में आई चाहे बाहर गई, जहां भी थी वहां से ऑनलाइन 40 दिन अमृत वेला किया और कराया। आप नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन 40 दिन पूरे होने के 3rd दिन सामने से एक जगह बहुत समय पहले देखी हुई थी, वहां से फोन आया, बहन जी आप लोगों ने क्या सोचा। अब वो जगह ऐसी थी जो जमीन नहीं थी, कोई कॉमर्शियल प्लेस थी जहां हॉल वगैरह, माना हमारी एक्टिविटीज बहुत अच्छी तरह चल सकती ऐसी जगह थी। अब सब भाई बहनों को लगता था बहन जी हम कोई जमीन लेवे और बड़ा बड़ा मकान और भवन बनावे। उस समय बाबा ने एक ही बात बार बार सामने लाई, बच्ची कल किसने देखा ये जगह तुम सिलेक्ट कर लो, हाँ कर दो। हाँ की, बड़ों की हाँ हो गई, मधुबन से हाँ हो गई और एक मास भी पूरा नहीं हुआ और वो जगह खरीद भी हो गई। ये योग का प्रयोग खुद किया, इसमें दो चीज मैंने अनुभव की। अगर हमारा योग का सिंसियरली किया हुआ, दृढ़ प्रतिज्ञा से किया हुआ प्रयोग है तो एक बुद्धि की लाइन क्लियर होती है और दूसरा हमारे कार्य निर्विघ्न आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्या करना है वो क्लैरिटी मिलती जाती है। इसीलिए योग के प्रयोग हमें बीच बीच में खुद खुद के साथ अपने परिवर्तन के लिए, हर बार दूसरों के लिए नहीं, खुद मेरे स्वभाव का परिवर्तन, संस्कार का परिवर्तन, कई बातों में अभी हमको बदलना है क्योंकि हमें नंबर 1 स्थिति तक पहुंचना है। तो एक है हमारी माया जीत स्थिति, माना माया आवे, क्योंकि माया को तो ऊपर से ऑर्डर मिला है कि मेरे बच्चों के साथ रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ना, मेरे बच्चे भी कम नहीं है, तुम जीतने वाली नहीं हो। बाबा तो माया को ये चैलेंज दे दी है, इसीलिए माया तो आएगी, लेकिन हमारा काम है, हम है ही विजयी आत्मा, ये ईश्वरीय वरदान मिला हुआ है, इसीलिए हमें माया कितना भी कागज का मुखौटा पहन करके आवे हमें डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, भूलने वाली बातों को मुझे भुलाना सीखना पड़ेगा। क्या होता है खासकर माताएं, बरसों पुरानी बातों निकलेगी नहीं अंदर से। मैं इस घर में शादी करके आई ना तो मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे पहने कपड़े से निकाला था, मेरे घर परिवार वालों ने ये मेरे को तकलीफ दी थी, निकलती नहीं है वो बात अंदर से। ऐसे ही भाइयों के साथ कभी जॉब में कभी बिजनेस में किसी ने धोखा दिया, भूलते ही नहीं। जो भूलने वाली बात मैं भूल नहीं सकती हूँ, वो योग में कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में, डायरेक्ट नहीं, सूक्ष्म रूप में मुझे डिस्टर्ब जरूर करेगी। अंदर अशांति के रूप में, अंदर अभाव के रूप में, अंदर असंतुष्टता के रूप में वो चीज कहीं ना कहीं चुभेगी। इसीलिए ऐसी कोई भी घटना, कोई भी बात हमारे से अगर बाय चांस कहीं जीवन में हो भी गई है हमारे साथ, उसको बाबा को पत्र लिखो, बात को बाबा को देकर के खत्म कर दो। और जिन आत्माओं का आपके साथ कुछ अयोग्य व्यवहार रहा, उन्हें कल्प पहले की बात याद करके या पिछली कोई जन्मों का हिसाब किताब याद करके हमने हमारे कर्ज को उतार कर पूरा किया है। कर्ज उतरा मना हल्के हुए हैं, धोखा दिया हो सकता है उन आत्माओं के साथ, हमारा कोई जन्म का कोई लेन देन का कोई संबंध बंधन रहा हुआ होगा, भला हुआ छूटी जंजाल। क्षमा करना पड़ेगा, स्वाहा करना पड़ेगा। जो भूलने वाली बातें भूलेंगी, अंदर बुद्धि खाली होगी, तब उसमें वो निश्चय वाली याद टिक सकेगी। तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें कंबाइन रूप का, क्योंकि माया अकेलापन बहुत अनुभव कराती है, कहीं भी किसी भी रूप में हम अकेले नहीं है। अगर कोई कहे कि कोई तो चाहिए ना समय पर मदद दे, अरे ये इतना बड़ा परिवार बाबा ने किस लिए दिया है? भगवान को हजार भुजा वाला कहा है ना, कहा है ना सहस्त्र भुजाधारी। हम सब कौन है? उसकी भुजाएं। अगर मेरा बाबा के साथ का संबंध बहुत वफादारी वाला है, तो मेरी आवश्यकता के समय बाबा इतने बड़े परिवार में से किसी भी आत्मा को टच करेगा और मेरी मदद के लिए समय पर मेरे पास भेज देगा। ये अनुभव करके देखो, भले भगवान देहधारी नहीं है, लेकिन इतने सारे देहधारी उसके मददगार है। ऑपरेशन है, कौन करेगा? अरे बाबा अपने किसी बच्चे को ऐसा भेज देता है, कहेगा भाई चिंता नहीं करो, दो दिन मैं आपके साथ रात रहूंगा। अरे निमित बहन को बाबा टच करेगा, निमित बहन कहेगी भाई तू चिंता नहीं कर, मैं सेंटर के कुमार को कहती हूँ, समय पर आपको दो तीन दिन हॉस्पिटल में हेल्प कर देगा। ये क्या हुआ? हम समझते वो कुमार ने मदद की, वो माता ने मदद की, वो कुमारी ने मदद की, ये गलत है। उस समय तुरंत बुद्धियोग बाबा के पास जाए, थैंक्स बाबा आपने समय पर किसी को भी निमित्त बनाकर इस आत्मा की मदद मुझे भेज दी। तो याद किसकी आएगी? याद बाबा की आएगी या देदारी की आएगी? हम कहते उसने उसका उपकार है हमारे पर, अरे करने वाला भगवान है, कराने वाला भी वो है, इसीलिए हमको मन छोटा करने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। ये अनुभव को बढ़ाओ तो ये अनुभव होगा कि मैं एक कदम आगे रख रही हूँ, मेरे आगे के कदम का प्लानिंग बाबा ने करके रखा है। ये अनुभव करके देखो, ये प्रयोग है, ये योग है, ये पुरुषार्थ है। खाली बैठ जाना मैं आत्माओं परम धाम, फिर क्या होता है? ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे आते आते ऐसा धीरे धीरे हम बोर होने लगते हैं ना कि सचमुच ऊपर से यूं ही नीचे आ जाते हैं और पता ही नहीं चलता। हम 2 घंटा योग करके उठे लेकिन मेरी शक्तिशाली अवस्था कितना समय रही, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक है पहला कदम माया जीत स्थिति, हम बुद्धि की लाइन क्लियर करते जाएं, हम बाबा से मदद का अनुभव करते जाएं, करावनहार करा रहा है इस फीलिंग को बढ़ाते जाएं, तो माया सामने आएगी लेकिन बाबा वो योग के द्वारा एक सेफ्टी का कवच बनाकर हमें हर बार माया से बचा लेगा। दूसरा स्टेप है माया जीत स्थिति के बाद, दूसरा स्टेप है विकर्मा जीत स्थिति। जब मैं माया को जीत सकती हूँ, अब मायावी कर्म के कारण हमारे विकर्म बनते हैं। अगर विकर्म की हम व्याख्या को देखें तो बाबा ने जो सूक्ष्म व्याख्या दी है वो ये है कि कोई भी विकार के सूक्ष्म अंश के वशीभूत होकर किया गया कर्म ये विकर्म के खाते में जाता है। कोई भी विकार, सिर्फ काम विकार की बात नहीं है, उसको तो बाबा ने महाशत्रु कहा और वो पतन की सीढ़ी कही। अब हम बाबा के बच्चों ने पहला स्टेप स्थूल पवित्रता ब्रह्मचर्य व्रत को तो धारण कर लिया और मेजोरिटी को अब वो नेचुरल हो गया है, इसमें मेहनत भी नहीं हो रही है मेजोरिटी को। लेकिन कोई भी विकार का सूक्ष्म अंश ये भी मेरे कर्म को विकर्म के खाते में ले जाता है। अब 2 प्रकार के विकर्म के खाते हैं, एक पिछली जन्मों में हम जो जो विकर्म करके आए हैं और जो अभी तक चुत्त नहीं हुए हैं ऐसे विकर्मों का खाता अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ है। अब वो हमारे अंदर है, इसकी परख क्या, पास्ट के विकर्मों का खाता अभी तक भी है, इसकी परख क्या, संस्कार। नॉलेज सब है, जानते सब है लेकिन कई बार वो अंदरूनी संस्कार परिस्थिति ऐसी बनने पर अचानक बाहर आ ही जाता है। गुस्सा करना नहीं था, गुस्सा कर भी नहीं लिया, हो गया। अब हो गया इसका मतलब वो मेरा पिछला संस्कार के रूप में अभी तक मेरे अंदर है। तो एक हमारी पिछली विकर्मों का खाता है जो संस्कार के रूप में है और दूसरा जाने अनजाने इस जन्म में किए हुए हमारे विकर्म। ज्ञान मिलने के पहले भी हमने अनजाने में बहुत सारे विकर्म किए और मेरे भाई बहने ज्ञान में आने के बाद भी कई बार अलबेलेपन में भी हम बहुत सारे विकर्म कर लेते हैं। मिसाल, बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि जो भी आपके लिए निमित्त है उनको निमित्त बनाने वाला मैं हूँ, उन बड़ों के लिए अगर कोई भी उल्टी सुलटी बात कही तो ये कौन से खाते में जाएगा, कौन से खाते में जाएगा, विकर्म के खाते में। चलो गलत बात हो भी गई है, मैं उसका वायुमंडल और वाइब्रेशन ना बनाऊं ये तो मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। میں نے مانو غلطی دیکھ بھی لی. اب وہ غلطی کو سما لینے کے بجائے میں نے اس کا وایو منڈل بنایا, 10 لوگوں کو جا کر کے یہ بات کہی, سنا, پتا چلا, یہ 10 جگہ میں نے بات کہی, یہ کون سے کھاتے میں جائے گی؟ وکرم کے کھاتے میں جائے گی. جو بے سمجھی سے کیا اس کا کھاتا, اور جو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے نالج فل ہوتے ہوئے پھر بھی یا تو اپنا اہنکار وش کیا, یا کس کو نیچا دکھانے کے لیے کیا, یا کوئی غلط بات کو ہم نے پھیلانے کا کاریہ کیا, کیا یہ یگیہ کے انکول کاریہ ہے؟ یگیہ رکشک ایسا کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے نا. تو وہ کون سے کھاتے میں جائے گا؟ کون سے کھاتے میں جائے گا؟ وکرم کے کھاتے میں جائے گا. انجانے میں کیے ہوئے وکرم کا کھاتا اور سمجھ کر کے جو البیلے ہو کر کیے ہوئے وکرم کا کھاتا, اس میں کئی گنا پرسنٹیج وکرم کا کھاتا بن جاتا ہے. ہم سمجھتے ہم 10 ورش سے 20 ورش سے گیان میں چل رہے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ جھلک, وہ فلک, وہ رونق, وہ تیج کیوں ہمارے چہرے پر نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ کیوں ہمارے میں بابا ابھی تک نہیں پرتیکش ہو رہے ہیں؟ ہمارا پچھلے وکرموں کا کھاتا ابھی بھی ہماری آنترک شکتیوں کو کھن کر رہا ہے, نربل کر رہا ہے. اس لیے ہمیں قدم قدم پر ہمارا وکرم کسی روپ میں نہ بنے. اور اس کی سب سے شریشٹھ ودھی ہے شریمت پر ہمارا درڑھ وشواس اور شریمت کی ویلیو. ابھی شریمت کیا ہوتی ہے میں ایک ایگزامپل آپ کو سناتی ہوں. ایک کمار تھا, کمار آئی ٹی پڑھا ہوا تھا, تو اس کو ذرا اندر کا یہ سنکلپ تھا کہ مجھے ودیش میں چانس مل جائے نا تو بہت اچھا ہے. 2-3 بار اس نے ٹرائی کیا, اس کا میل نہیں پڑا. وہ آیا میرے پاس تو کہا, بہن جی میرے کو بہت اچھا ہے, پتہ نہیں بابا کیوں نہیں میری سن رہا ہے. تو میں نے ہنستے ہنستے اس سمے ایسے ہی کہہ دیا کہ دیکھو بابا کو آپ سے کوئی بہت وشیش کاریہ کرانا ہوگا, اسی لیے سنکلپ نہیں چلاؤ, بابا ابھی جہاں بٹھا رہے ہیں نا وہاں اپنا کاریہ کرتے چلو. کچھ سمے کے بعد اس کی اچھا امریکہ کی تھی, لیکن اس کو جو جاب ملی وہ سویڈن میں ملی. پھر پوچھنے آیا, سویڈن میں جاب ملی ہے, کوئی سینٹر وہاں ہے نہیں ہے پتا نہیں ہے, یورپین کنٹری میں جاؤں؟ بھائی جا, تیرے پاس بابا کو کچھ اور کاریہ کرانا ہوگا, سیوا کرانی ہوگی, ایسے کنٹری میں بابا بھیج رہے ہیں. ہمت سے گیا. اب وہاں جو سینٹر چل رہا تھا اس میں 2-5-7 لوگ آ رہے تھے, اس میں انڈینز کی کوئی خاص سیوا نہیں ہوئی تھی. وہ ہر آئے دن سویڈن سے فون کرتا تھا, کچھ باتیں پوچھتا جاتا تھا, پوچھ کر کے کرتا چلا گیا, کرتا چلا گیا. آج 40 انڈین بھائی بہنیں اس کے پاس روز کلاس کر رہی ہیں. اس کو قاعدے سے سینٹر کا ریکگنیشن دے دیا, اور وہ قاعدے سے ابھی ایک سینٹر کوآرڈینیٹر کے روپ میں وہاں کی سیواؤں کو لک آفٹر کر رہا ہے. بڑوں کو جیتا کیول ایک ہی کارن, چھوٹے سے چھوٹی بات بھی اس نے بنا رائے کیے کبھی نہیں کی. اب وہ ودیش میں تھا, بڑوں کی اتنی رحم نظر تھی اس پر. جیسے ہی سینٹر کوآرڈینیٹر بنا, پہلا کوشچن پوچھا, بہن جی अब ये भंडारी वगैरह को मुझे क्या करना चाहिए और किस रूप से काम करना चाहिए। मैंने विदेश के हिसाब से डायरेक्शन कहाँ से लो, कैसे लो, किस रूप में भंडारी का यूज करना चाहिए, कैसे उसको मधुबन के लिए निकालना चाहिए, जो मेरी समझ थी वो गाइडेंस मैंने उसको दे दी। आज सारे बड़े उससे बहुत खुश है और सारा कारोबार बिल्कुल निर्विघ्न चल रहा है। ये मैंने सीखा कि जितना व्यक्ति श्रीमत पर मजबूत होता है, पढ़ा लिखा लड़का है, वहां भी मैनेजर की पोस्ट पर है, ये कुछ मोबाइल सबको पता है उसकी चिप्स स्वीडन में बनती है, वो कंपनी का वो मैनेजर है, वो लेवल पर है अभी वो कुमार, लेकिन छोटी छोटी बात शुरू से पूछ कर करता गया, ये संस्कार बना, तो अब वहां भी अपने बड़ों को हर बात उसने पूछ करके करना शुरू की, हर बात बड़ों को ध्यान पर देना शुरू की, ब्लेसिंग मिल गई। और बाबा ने ऐसी सेवा वहां विदेश में बैठकर कराई जो हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते। श्रीमत की वैल्यू हो हमें। और देखो बाबा ने एक बात बहुत पक्की कराई है कि आपने अगर आपके निमित्त से श्रीमत ली और उसमें मानो कुछ गड़बड़ भी होगी तो वो ठीक करने की जिम्मेवारी बाबा ने कहा है मेरी है। हम इस बात को कभी भूले नहीं। बाबा की श्रीमत को हम बहुत प्रॉपर तरीके से समझें, उसको इंटरप्रेट करें। कल या परसों की मुरली में बाबा ने कहा मेरी अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग राय है, गृहस्थियों के लिए अपनी राय, कुमार कुमारियों के लिए अपनी प्रकार की राय। हम बाबा की बात को ठीक पर्सपेक्टिव में समझ लें। अगर छोटी छोटी बातों को हम श्रीमत के साथ मापते तोलते रहेंगे तो हमारे से श्रीमत विरुद्ध का कोई कर्म होगा ही नहीं। दूसरी बात, विकर्माजीत स्थिति के लिए कर्मेंद्रियों का मालिक होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखो साकार बाबा ने भी ये मेहनत की, नंबर वन आत्मा ने भी। सुनते हैं ना बाबा कचेरी लगाते थे, मन मंत्री आज ठीक चला, बुद्धि आज ठीक राय दी या कहीं गड़बड़ भी की। बाबा कचेरी करता था और अपनी स्थूल और सूक्ष्म दोनों इंद्रियों को चेक करते थे कि आज कोई भी कर्मेंद्रिय ने मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलकर कोई गड़बड़ वाला काम तो नहीं किया। तो कर्मेंद्रियों का कंट्रोल हमें विकर्मा जीत स्थिति की तरफ ले जाएगा, क्योंकि फिर कैसी भी परिस्थिति है लेकिन कर्मेंद्रियों पर मेरा संयम होने के कारण। और इसके लिए छोटे छोटे प्रयोग करो, कभी एक सप्ताह जो चीज मुझे बहुत पसंद है ना वो एक सप्ताह मुझे नहीं खाना है, छोटे छोटे प्रयोग करो लेकिन अपने संयम की शक्ति को बढ़ाओ। हम बड़ी बड़ी चीजों में संयम कर लेते हैं लेकिन छोटी छोटी चीजों में। एक बुजुर्ग आता था मेरे पास, उसको रबड़ी बहुत पसंद थी, ज्ञानी बाबा का बच्चा था लेकिन रबड़ी बहुत पसंद थी, डायबिटीज का पेशेंट था इसलिए घर वाले उसको रबड़ी बनाकर कभी खिलाते नहीं थे। उसका रबड़ी के लिए इतना प्यार था कि वो कहीं भी देखता था, कोई ज्ञानी के पास भी रबड़ी की बात हुई या कोई रबड़ी उसको बनाकर देने वाला होता था तो घर वालों से छिपा के वहां जाके रबड़ी खा के आता था। इसका मतलब बात रबड़ी की नहीं है, बात क्या है, इतना भी संयम वो अपने पास नहीं कर सका। अब हम कहलाने को योगी, राजयोगी, लेकिन छोटी सी कर्मेंद्रिय पर भी अभी तक 8 दिन तक अगर मैं ये कहूँ कि मेरा कंट्रोल नहीं है तो कहाँ विकर्माजीत और कहाँ कर्मातीत। कर्मातीत स्थिति वो है जिसमें ये सभी आकर्षणों से बुद्धियोग ऊपर उठ जाए। आकर्षण मेरे सामने है लेकिन बुद्धि ऐसी वैराग्य वृत्ति में है कि वो चीज होते हुए भी मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है, ये कर्मातीत स्थिति है। मैं कर्म कर रही हूँ लेकिन कोई भी कर्म मेरे लिए बंधन का रूप नहीं है, ये कर्मातीत स्थिति है। अब कर्म बंधन का रूप कैसे बनता है? मानो मैंने कार्य किया, अब फिर मानो आज मैं ये क्लास कराया, अब फिर वो बंधन कैसे बनता है? 2-4 लोगों से मेरा कान तरस रहे, समझा मेरी बात को? अब ये क्या है? ये कर्म तो किया, कर्म करके मैं न्यारी नहीं हो गई। अब बाबा ने मुझे पाठ दिया और मैंने बाबा कल पहले जैसे किया था मैंने किया, बाबा ने मेरे से जो भी पाठ बजवाया वो एक्यूरेट बजवाया किया, उसको लंबे समय तक उसी कार्य में मैं अपने मन को रमाती रही, वो कर्म धीरे धीरे क्या बन जाएगा मेरे लिए? बंधन का रूप बन जाएगा। और फिर वो बंधन मुझे उड़ने नहीं देगा, मैं अपने लिए कुछ मार्क्स बना लेती हूँ और वो मार्क्स मुझे नहीं मिला तो बस मेरी अवस्था डावाडोल। ये कर्म बंधन बनना। इसीलिए 3-4 बातें जो बार बार बाबा कहते रहे हैं विकर्मा जीत स्थिति के लिए आवश्यक है। ना कोई लगाव अब मुझे अपनी ओर आकर्षित करे, ना किसी के ऊपर में प्रभावित हो जाऊं, क्योंकि प्रभावित होना वो होता टेम्पररी है लेकिन उसका असर लंबे समय तक चलता है। कोई कितना भी प्रतिभाशाली है, प्रभावशाली है, उसके अंदर ये प्रतिभा और प्रभाव कहाँ से आया? कहाँ से आया? भरा तो बाबा ने ना, तो जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अगर मैं बुद्धि को ट्रांसफर कर सकती हूँ तो कभी भी कोई व्यक्ति का प्रभाव मुझे प्रभावित नहीं कर सकेगा। तो लगाव, प्रभाव, अभाव, पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं है, इसीलिए कई नजर डूबे ही नहीं। और झुकाव, अब मेरी बुद्धि कहीं भी झुकती नहीं है, झुकती है केवल एक के पास, क्योंकि सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों का सार एक में समाया हुआ है। ये स्थिति, ये पुरुषार्थ है। हम में से कोई भी अभी 100% इन बातों से जीता नहीं है, मुक्त नहीं है, लेकिन हमें इन बातों को जीतकर अपनी कर्मातीत स्थिति तक पहुंचना है। कर्मातीत स्थिति भी आत्माओं की नंबरवार होगी। जो नंबर 1 आत्मा की जिस रूप की कर्मातीत स्थिति बनी वो 16,000 वाली आत्माओं की उस रूप की कर्मातीत नहीं होगी, लेकिन उनके लेवल में वो कर्मातीत होंगी। तो हम हरेक प्रयास करें कि पहले माया को परखे, माया जीत बने, दूसरा हमारा कंटिन्यूस इस बात पर अटेंशन हो कि चलते फिरते अब मेरे से कोई भी सूक्ष्म विकर्ण ना बने। जो भी पिछला बोझ है उसको मैं योग बल बढ़ाती जाऊं, उसको भस्म करूं, आत्मा को लाइट करूं। और निर्बंधन अवस्था, निर्संकल्प अवस्था, विकल्प की बात तो विकर्माजीत स्थिति में ही संपन्न हो जाती है, लेकिन कोई संकल्प भी अब मुझे हलचल में लाने वाला नहीं है। बेहद की आंतरिक वैराग्य, शुद्ध सात्विक स्थिति, ये हमारा लक्ष्य कर्मातीत। कर्म तो करना ही है, लेकिन वो कर्म बंधन का रूप न बने, वो कर्म किसी रूप से विकर्म का रूप न बने, वो कर्म मेरे जमा के खाते को निरंतर बढ़ाता जाए। ओम शांति। बाकी तो शाम को 5 बजे समय पर सभी जरूर पहुंच जाना। देखिए तपस्या का थोड़ा सा समय हम सबके पास है, और आप सब बहुत लकी हैं कि मधुबन निवासी आप लोगों को स्पेशल शाम को दोनों ही समय योग कराने के लिए अपना समय दे रहे हैं। तो जरा भी टाइम को वेस्ट न कर शाम को ठीक 5 बजे सभी जरूर पहुंच जाना। ओम शांति।
राह दिखा कर